इप्सिता ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अपना हाथ हटाइए। अभिमन्यु ने कार का दरवाज़ा पकड़ा हुआ था। इप्सिता ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, आपको चोट लग जाएगी, हटाइए अपना हाथ। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। उसने अपना हाथ कार के दरवाजे पर से नहीं हटाया। इप्सिता ने चिढ़ते हुए कहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए हाथ हटाइए और हमें जाने दीजिए। इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मत करिएगा कोई बात, लेकिन आप हमारी बात सुन तो सकती है ना, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हमने उस दिन ऐसा क्यों किया, हम आपको शादी के मंडप में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इप्सिता ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने अकेला छोड़ दिया हमें, अब हम आपका कोई एक्सप्लेन नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए प्लीज। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अभिमन्यु का हाथ कार के दरवाजे से हटाया। उसने कार का दरवाजा पटकते हुए बंद किया और फिर कार को अंदर से लॉक कर लिया। अभिमन्यु इप्सिता की कार के बाहर खड़ा उसके शीशे को नोकते हुए बोला, प्लीज इप्सिता, बस एक आखिरी बार हमारी बात सुन लीजिए। मगर इप्सिता ने उसकी बात ना सुनने की शायद कसम खा रखी थी। उसने अपनी कार की तरफ देखते हुए कहा, अगर अभी कार स्टार्ट नहीं हुई तो हम अभी के अभी कैब बुक कर लेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की। दो तीन बार ट्राई करने पर कार स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन चौथी ही बार जैसे ही इप्सिता ने कार की चाबी घुमाई, कार स्टार्ट हो गई। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, इप्सिता ने तुरंत दूसरे गियर में हाथ डाला और सीधे तेज रफ्तार में वहां से आगे निकल गई, क्योंकि वो सच में अभिमन्यु से कोई बात नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंची, उसने कहा, प्लीज गॉड, अब इस कार को बंद मत करिएगा। इतना बोलकर इप्सिता ने मिरर से पीछे की तरफ देखा। अभिमन्यु अभी भी वहीं अपनी जगह पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। इप्सिता ने एक गहरी सांस ली, उसने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया, वो सीधे घर की तरफ निकल आई। उसकी कार कहीं पर भी नहीं रुकी, वो सीधे फ्लैट के नीचे आकर रुकी। उसने गाड़ी से अपना सारा सामान निकाला और सीधे अपार्टमेंट पहुंची। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। आज 6 महीने बाद ऐसे अचानक से अभिमन्यु से मिलना उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभिमन्यु इस तरह रास्ते में उसे मिलेगा, ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बस इत्तेफाक से उससे मिला या फिर जानबूझकर उसका पीछा कर रहा था। ये सब सोचकर वो एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत फिर से आकर उसके वर्तमान में खड़ा हो जाए। वो सब कुछ बड़ी मुश्किल से ही पीछे छोड़ पाई थी और अब फिर से वही सब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपार्टमेंट पहुंचते ही उसका चेहरा अभिमन्यु की वजह से काफी ज्यादा उतर गया था। जब वो लिफ्ट में थी, उसने अपने मन में कहा, क्यों अभिमन्यु, क्यों वापस आ रहे हैं आप हमारी लाइफ में, हमें नहीं लगता हम दोबारा आपको कभी भी अपनी लाइफ में स्वीकार कर पाएंगे, आपका हमसे दूर रहना ही सही है, बहुत मुश्किल से संभाला है हमने खुद को, दोबारा फिर से आपका मेरी जिंदगी में आना ये अब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम किसी भी हाल में आपको अब अपनी फैमिली की लाइफ के बीच में दखलंदाजी नहीं करने देंगे। आप होंगे कुंवर अपने राजघराने के, लेकिन शादी वाले दिन आपने हमारे साथ जो किया उसके बाद अब हमारी नजरों में आपके लिए कोई इज्जत नहीं बची है। इप्सिता ये सारी बातें सोच रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। इप्सिता सीधे अपार्टमेंट के दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाने लगी। तभी नंदिनी की माँ किचन से दरवाजे तक आईं। उनके हाथ में कलछी थी। उन्होंने दरवाजा खोला। अपने सामने इप्सिता को खड़े देखकर उन्होंने थोड़ा आश्चर्य करते हुए कहा, अरे इप्सिता बेटा, तुम इतनी जल्दी, मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारे ऑफिस में पार्टी होगी, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी आ गई। इप्सिता ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, एक्चुअली बॉस ने मीटिंग तो की थी, लेकिन उसके बाद हमारा काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करें, वैसे भी ऑफिस में कहाँ अच्छे से कुछ सेलिब्रेट हो पाता है, इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं जल्दी आ जाऊंगी तो आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। इप्सिता की बात सुनकर नंदिनी की माँ खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बना लिया है, बस यही सोच रही थी कि मीठे में क्या बनाऊं। तभी इप्सिता ने अपने हाथ में पकड़े हुए केक के बॉक्स को उन्हें देते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है आंटी मीठा बनाने की, मैं केक ले आई हूँ, हम इससे ही मुंह मीठा कर लेंगे, वैसे भी सारा दिन तो आप किचन में लगी रहती हैं, आपको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। एक काम करिए, जब तक भाई और नंदिनी नहीं आ जाते आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। इतना बोलकर इप्सिता ने केक का बॉक्स वहीं टेबल पर रख दिया, फिर वो पानी निकालकर पीने लगी। इप्सिता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखते ही नंदिनी की माँ को उस पर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या बात है इप्सिता बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्सिता उनकी बात सुनकर ना कहकर अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, फ्रेश हो जाएंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। इप्सिता उन्हें अभिमन्यु के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए इतना बोलकर वो उठी और सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उसे जाते देखकर नंदिनी की माँ ने कहा, कुछ तो हुआ है इप्सिता के साथ, वरना जब गई थी तो अच्छी खासी थी, अभी आई है तो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, आखिर हुआ क्या है? इप्सिता चुपचाप अपने रूम में आकर बैठी। उसने वॉशरूम के अंदर जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा सच में पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह अचानक से अभिमन्यु के वापस आने पर इतना अजीब क्यों महसूस कर रही है। इप्सिता ने खुद से सवाल करते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम अभिमन्यु की वजह से अपनी लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, उनकी वजह से हमारी लाइफ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम क्यों भला उनकी वजह से अपनी लाइफ पर बात करें, पहले ही वो मुझे इतना आघात पहुंचा चुके हैं, अब और नहीं, वैसे भी हम जब से भाई और नंदिनी के साथ यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ही हमने उदयपुर की सारी यादें सब कुछ वहीं छोड़ दिया था। अब आपका इस तरह से हमारी लाइफ में आना हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। हम अब एक स्वतंत्र लड़की हैं जो अपने सपने पूरे कर रही है, और हमें आप जैसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है जो शादी वाले दिन किसी लड़की को मंडप में छोड़कर चला जाए। ऐसे आदमी को हमारी लाइफ में होने का कोई हक नहीं है। इप्सिता ने इतना बोलकर एक गहरी सांस ली। वो बस खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि अभिमन्यु को देखकर वो पिघल नहीं सकती थी, और जिस तरह से वो उससे विनती कर रहा था वो सब अभी भी इप्सिता को याद आ रहा था। लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि अभिमन्यु ने जो उसके साथ किया वो सच में बहुत गलत था। इस समय इप्सिता काफी ज्यादा दुखी थी। उसे अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए इप्सिता ने अपनी तौलिया उठाई और खुद को शांत करने के लिए वो शॉवल लेने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का काम जैसे ही खत्म हुआ उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उदय को कॉल करने लगी। उदय ने जैसे ही उसका नंबर देखा उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो मिसेस, क्या बात है, इस समय हमें कॉल करने की कोई खास वजह?
नंदिनी ने उदय की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वैसे तो कोई खास वजह नहीं है, एक्चुअली इप्सिता घर चली गई है, मैंने उसे कार ले जाने के लिए बोल दिया था, तो मैं ये सोच रही थी कि आप मुझे ऑफिस से वापस लौटते समय पिकअप कर सकते हैं अगर आप फ्री हो तो। लेकिन अगर आप बिजी हैं या आपको ऑफिस से निकलने में समय लगने वाला है तो कोई बात नहीं, मैं कैब बुक कर लूंगी। नंदिनी की आवाज़ सुनकर उदय ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे नेकी और पूछ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैब बुक करने की, हम आपको पिकअप करने आ रहे हैं। वैसे भी हमें आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है। नंदिनी ने जैसे ही उदय के मुँह से गुड न्यूज़ शब्द सुना वो कन्फ्यूज़ होते हुए बोली, कैसी गुड न्यूज़? आपको भी गुड न्यूज़ देनी है? आज का दिन तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक के बाद एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है, बताइए क्या हुआ? उदय ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था, आशा है अब हमारी लाइफ में आने वाला हर एक दिन इसी तरह का हो, हमारी फैमिली को किसी की नज़र न लगे। नंदिनी उदय की बात सुनकर बोली, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा, हम सबको किसी की नज़र नहीं लगेगी, जितनी नज़र लगनी थी वो सब पहले ही लग चुकी है, अब हम सब एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। उदय नंदिनी की बात सुनकर हामी भरता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, अब थोड़ी देर में आपको पिकअप करते हैं। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर उसे रोकते हुए कहा, अरे लेकिन एक मिनट रुकिए उदय, हमें ये तो बताइए आखिर गुड न्यूज़ क्या है? उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर में हम मिलकर ही बताते हैं, ऐसे फ़ोन पर बताना हमें अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर उदयवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। थोड़ी ही देर में उदय वहाँ स्टूडियो के बाहर पहुँचा। उसने वहाँ पहुँचते ही नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो उदय, क्या हुआ, आप नहीं आ रहे हैं क्या? उदय ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं आएंगे हम, ऐसा क्यों लगता है आपको, बाहर आइए, हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, क्या आप इतनी जल्दी आ भी गए? उदय ने उसे बताया, वो जब आपने हमें फ़ोन किया था तो हम रास्ते में ही थे, चलिए जल्दी से आइए, कितना समय लगेगा आपको? नंदिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी ने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया। वो तेज कदमों से भागते हुए स्टूडियो से बाहर निकली। उसने देखा उदय की कार बाहर खड़ी हुई थी। उदय कार से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ा उसका ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। नंदिनी भागते हुए वहां पर आई। उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी हमने आपको ज्यादा देर वेट कराया। उदय नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जिसकी इतनी प्यारी इतनी क्यूट वाइफ हो उसके लिए इतना वेट करना तो बनता है। नंदिनी उदय की बात सुनकर कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, ये मीठी मीठी बातें करना तो कोई आपसे सीखे, चलिए बैठिए अब। जैसे ही नंदिनी कार में बैठी उदय भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। नंदिनी अभी भी उसकी गुड न्यूज़ सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। उदय कार स्टार्ट करने जा ही रहा था तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे आप?